प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग दो, लेक्चर नंबर 52। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धां, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्टगापि कर्मणे प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थशी महावीरने वैशेषतीर्थंकरने सिद्धशुद्धासित्वने मुनि ज्ञान ग्रहचारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदो अरे हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने सिद्धने नमस्करण करिये गणधरने अध्यापकोने सर्वसाहु समूहने सुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुक्त पवित्र आश्रम पानिने प्राप्ति करूं सान्यनिजे नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी हुई है, तत्व प्रदीपिका टीका लिखी है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें से ये दूसरी पुस्तक है और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 56 पर, 56। ये शुरुआत के 5-6 लाइन हमने पढ़ी थी, यहाँ नए पैराग्राफ से भी शुरुआत करते हैं। यहाँ तो ऊपर के लास्ट लाइन हमने देखा था कि अपने क्षेत्र में रहकर अपने भाव में रहकर तीन काल तीन लोक का ज्ञान होता है, यानी लोक अलोक सबको जान लेता है। यह तो अभी आत्मा कैसा है इसकी बात करते हैं, अंदर आत्म वस्तु यानी नव तत्व में आत्म तत्व कैसा है इसकी बात चलती है। समझ में आया? श्रोता पूछते आत्मा माने कौन? समाधान, आत्मा यह अंदर जानने वाला है, यह आत्मा है, यह सब जानने में आए वह पर जानने वाला यह आत्मा। दर्पण जैसे स्वच्छ है तो उसमें जो चीज सामने हो उसका प्रतिबिंब उठता है। यह जो प्रतिबिंब उठता है यह कोई परवस्तु अंदर नहीं है, परवस्तु अंदर है दर्पण, है दर्पण, उसके सामने अग्नि है, उसका प्रतिबिंब उठता है तो क्या अग्नि वहां है? कहते वहां दर्पण में तो अग्नि के आकार दर्पण स्वच्छ रूप से परिणमित हुआ है, वो दर्पण की अवस्था है, दर्पण उस रूप परिणमित हुआ है, वह दर्पण लिखा है, वह दर्पण की अवस्था है। कहा गया अग्नि को छुए तो उष्ण होता है, वहां दर्पण में अग्नि दिखे तो वहां अंदर दर्पण में अग्नि है वहां उष्ण है, क्योंकि जहां दर्पण में अग्नि दिख रहा है हमने हाथ लगा के देखा तो कैसा अग्नि गर्म थी क्या? वो ठंडी है, वो अग्नि ठंडी नहीं, अग्नि का प्रतिबिंब जो दर्पण की अवस्था है, वह तो दर्पण की स्वच्छ अवस्था की दशा है। ऐसे भगवान का ज्ञान लोकालोक को देखता है अथवा सब गेयाकार का ज्ञान होता है, वह अपनी स्वच्छता के कारण होता है, उसको स्वच्छत्व गुण भी कहते हैं, और वो सबको प्रकाशित करता है, प्रकाशत्व गुण भी कहते हैं। वो ज्ञान के ही अलग अलग अपेक्षा से उसका नाम है। जो गेय है वह यहाँ आता नहीं। जैसे दर्पण में अग्नि का आकार होता है, यह दर्पण की अवस्था है, उसमें अग्नि आती नहीं, आहा, वैसे ही दर्पण अग्नि में जाता नहीं, ऐसी बात है। यानी अग्नि अग्नि में, दर्पण दर्पण में, न्याय से लॉजिक से सिद्ध करते भाई, सूक्ष्म बात है प्रभु, आहा। जैसे अरीसा है, अरीसा कहते हैं ना, शीशा, हिंदी में शीशा कहते हैं, शीशा हो और उसके सामने कोई भी चीज है, मनुष्य हो तो मनुष्य दिखता है, तो क्या मनुष्य उसमें है? वह तो दर्पण की अवस्था है। क्या मनुष्य अंदर पड़ा है? आपने कभी देखा है, गौर किया है, ये चिड़िया जो है दर्पण के इतनी, उसको लगता है अंदर सामने कोई है, इतनी चोंच मारती है कि वो तो जैसे खून से घायल हो जावे। मनुष्य अंदर पड़ा है। ऐसे ज्ञान स्वभाव में नीम आम जगत के जड़ द्रव्य आदि सब दिखता है, जानने में आता है। वह क्या है? वह अपनी ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान गेयाकार होकर ज्ञानाकार हुआ है, यानी हमें जो ज्ञान में आ रहा है एक्चुअली वो हमारी पर्याय ज्ञान में आ रहा है, फिर भी किस संबंधी ज्ञान हो रहा है तो हमने कहा ये सामने की चीज हम जान रहे हैं। और क्या कहते हैं ये, ऐसा भगवान आत्मा अंदर है भाई, तुझे मालूम नहीं। वह आत्मा का ज्ञान गेयाकार होने पर भी ज्ञानाकार हुआ है, यानी वो कभी गेय रूप नहीं हुआ है। गेय जैसा उसने जान लिया है उसको गेयाकार भी कहेंगे, परंतु है तो वो ज्ञान का आकार, ज्ञान से बना है। दर्पण में नीम आदि दिखता है, वह नीम नहीं है। नीम प्रमाण दर्पण की अपनी अवस्था हो गई है। ऐसे यह ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा का ज्ञान गेयाकार को जानता है तो गेयाकार होता है, उसका अर्थ वास्तव में वह ज्ञानाकार हुआ है। ज्ञान में सब जानने की लायकात से ज्ञान ज्ञानाकार हुआ है। वो ज्ञान का अपना आकार है, वो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान से बनी है। लोगों को समझने की फुर्सत कहाँ है, आहा हा। और सच अगर हम जो जानने में आ रहा है उसको अगर हम ज्ञान की पर्याय समझ में आए, ज्ञानाकार कहते तो हम बहुत, क्योंकि पढ़े हैं ना शास्त्र में से, तो क्या ज्ञानाकार लगता है? सामने वाली चीज जो कोई गाली दे रहा है, आपने गाली सुनी, गाली के आकार हुआ ज्ञान, अगर उसको ज्ञान मानते तो फिर वो सामने वाले गुस्सा आने का कारण क्या था? उसको हमने ज्ञान कहाँ जाना, उसको हमने वो सामने वाला मुझे गाली दे रहे ऐसा समझा। वहां पर भी हम किसको जान रहे, हम तो अपनी ज्ञान की बरे। अगर उसको अगर हम ज्ञानाकार के रूप में सच में स्वीकृत करेंगे तो गुस्सा आने का सवाल कहाँ रहा? यानी कहीं पर भी इष्टानिष्ट, क्योंकि जैसे दर्पण में विष्ठा दिखे तो अच्छा के गुलाब का फूल अच्छा, बोलो गुलाब का फूल तो उसमें क्या है, उसको तो रिफ्लेक्ट करना है, उसमें इष्ट अनिष्ट क्या है, ये आपने क्या दिख रहा है उसको इष्ट अनिष्ट बने आपने माना है। ऐसे ज्ञान में भी वो झलक चीज झलक रही है तो उसमें इष्ट अनिष्ट पना क्या बात है? ज्ञान ने तो उसको झलकाया है, ज्ञान ने तो क्या जाना है, तो हमने वो जाना ऐसा नहीं मानते, उसमें वो राग द्वेष चालू हो जाते, इष्ट अनिष्ट मान लेते। यानी सच में हमने उसको ज्ञान की पर्याय रूप से भी स्वीकार नहीं किया। यह क्या है यार, सर्वगत कहा गया है, अर्थात ज्ञान को सबको जानने वाला कहा है। सर्वगत का अर्थ ज्ञान स्वभाव को सबका जानने वाला कहा है, और ऐसे सर्वगत ज्ञानमय करना, ज्ञानमय नहीं, ज्ञानमय होकर रहने से भगवान भी सर्वगत ही है। ज्ञानमय हुआ ना, वो ज्ञानमय करो। 101 मात्रा 100 हो गई उसकी, यानी ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा भी ज्ञान प्रमाण है, तो आत्मा भी सर्वगत हुआ इस तरह से। अभी आते हैं पेज नंबर 57 पर। भगवान यानी आत्मा पाठ में है ना, सवगदो जिनवस हो सूक्ष्म जिनवस है ना, जिनवृषभ यानी जिनवर भगवान। सूक्ष्म बात है भाई, यह तो अंदर तत्व की बात है। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वह अपने ज्ञान में रहकर सब ज्ञेयाकार का ज्ञान होता है, ऐसा होता है। तो ज्ञान में ज्ञेय या ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। पूछते भी नहीं, समझ में आया, समझ में नहीं, ज्ञान में आया, तो ज्ञान में कुछ घुस गया क्या, हमने जान लिया। हाँ, वास्तव में तो ज्ञान की पर्याय उस ज्ञेयाकार हुई है। इसलिए जैसे ज्ञान को सर्वगत यानी सबको जानने वाला कहा, वैसे भगवान को भी सर्वगत कहा है। देखो, भगवान ने आत्मा कहा पाठ में है, ऐसे सर्वगत ज्ञान में होकर रहने से भगवान भी सर्वगत ही है। सर्व ज्ञेयों को जानने वाला आत्मा ज्ञान में होकर रहता है, तो भगवान भी सर्वगत है। ऊपर बिंदी क्यों लगाए, सर्वगत है में, मूल पाठ में क्या था? उसमें तो संस्कृत गुजराती था ना, ठीक है। आगे पढ़ते, भगवान भी सर्वगत है पढ़ा ना नीचे, वो बोल्ड के नीचे की लाइन, आत्मा को भी सर्वगत कहने में आता है। उसके गुण को जब सर्वगत कहा, तो गुण के धरने वाले आत्मा को भी सर्वगत कहने में आता है। भाषा तो ऐसी सादी है प्रभु, परंतु क्या हो, अभी तो मार्ग में बहुत फेरफार हो गया है। मार्ग में फेरफार यानी मार्ग को समझाने में, उपदेश देने में, सुनने में फेरफार हुआ है। मार्ग तो कभी बदलेगा नहीं, जो मार्ग है तो ही एक हो ये तरण काल मा परमार्थनो पर। मार्ग तो मार्ग ही है, उसको समझने में बहुत फेरफार हो गया, और उसका उपदेश देने वालों में भी बहुत फेरफार करके वो उपदेश दे रहे, ये कह रहे। देह देवल में भगवान विराजते हैं, यह देह तो मंदिर है, उसमें देव नाम भगवान आत्मा चिदानंद प्रभु अनंत गुण का पिंड प्रभु विराजता है। उसके ज्ञान स्वभाव के कारण ज्ञान सबको जानता है, तो ज्ञान को सर्वगत कहा, सर्व को जाना ऐसा कहा। इस तरह भगवान आत्मा भी सर्व को जान लेता है, तो आत्मा को सर्वगत कहा। वही बात है, वो अलग अलग पद्धति से वही बात प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ज्ञान गुण को सर्वगत कहा, ऐसे आत्मा को भी सर्वगत कहा। भगवान को यानी यहाँ आत्मा को सिद्ध कर रहे। ये आपके हीरे होते हैं ना, हीरे इतने थोड़े हो तो करोड़ दो करोड़ के होते हैं, बहुत कीमती हो इतनी कीमत के होते हैं। उस हीरा को ज्ञान में जानते हैं, जैसा हीरा है ऐसा ज्ञान हुआ। तो हीरा का आकार यहाँ ज्ञान में नहीं आया, यहाँ तो ज्ञान की पर्याय हुई। उनके सामने वो झवेरी बाजार के वो सारे हीरे के व्यापारी बैठते थे, वो शांति भाई वगैरह, तो उनके सामने बैठ बोल रहे, परंतु ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, तो ज्ञान सर्वगत नाम सबको जानता है ऐसा कहने में आया है। हमने भी राजकोट में हीरा देखा है, 80,000 की कीमत का था। श्रोता, जिसने बड़ा हीरा आत्मा हीरा देखा है, उसको इसकी क्या कीमत, यानी गुरुदेव ने तो आत्म हीरा देख लिया है। गुरुदेव श्री, हीरा तो यह भगवान आत्मा है बापू, यह चैतन्य हीरा है ना, जिसका चमकता हुआ ज्ञान अनंत है। यह ज्ञान सर्व को जाने ऐसा कहा, तो प्रभु कहते हैं आत्मा भी सर्व को जानता है तो सर्वगत कहने में आता है, है? ऐसे ज्ञानमय होकर रहने से भगवान भी, भगवान यानी आत्मा सर्वगत ही है। जिनवर सर्वज्ञ की बात है ना, इस प्रकार सर्व पदार्थ भी सर्वगत ज्ञान के विषय होने से, पेज नंबर 57, इस प्रकार सर्व पदार्थ ज्ञान का विषय होने से, ज्ञान का विषय ने ज्ञान में जानने में आते हैं, यानी ज्ञान का सर्व पदार्थ ज्ञेय होने से, ज्ञान का सर्व पदार्थ विषय होने से है, सर्वगत ज्ञान से अभिन्न, नीचे से चौथी लाइन बोल्ड लिखा है ना, क्या कहते हैं, सभी पदार्थ ज्ञान के विषय है, तो सर्वगत ज्ञान से अभिन्न उन भगवान के वे विषय है। पहले क्या कहा, ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा भी सर्वगत है, अब कहते ज्ञान के विषय सब कुछ है तो आत्मा के भी विषय सब कुछ है, ज्ञान के द्वारा आत्मा प्रकटित करे, ज्ञान सर्वगत है इसलिए आत्मा भी सर्वगत है, ज्ञान सारे पदार्थ ज्ञान के विषय है इसलिए सारे पदार्थ आत्मा के विषय, ये कह रहे यहाँ पर। क्या कहा, अपना स्वभाव जो जानना है उसका विषय सब लोकालोक है, स्वभाव की बात है ना, वो तो हर एक के पास है और उसका विषय कितना जान सकता है, तो पूरा लोकालोक। तो ज्ञान का जो विषय है यह आत्मा का विषय है। अरे ऐसी बातें है, समझ में आया, ऐसा है श्रोता, इसमें ऐसा सब समझने में लाभ क्या है, यह समझ में नहीं आता। क्या कहा, आत्मा सबको जानने वाला, ये समझने से हमें क्या लाभ, ये तो लाभ की सोचता है ना, कौन सा लाभ चाहिए, मैं कितना घंटा व्यापार करूं तो मुझे कितना मिलेगा, आमदनी कितनी होगी, इसी को लाभ मानता है पूरा। अपना स्वरूप समझना सबसे बड़ा लाभ है, उसको कभी लगा ही नहीं आज तक। समाधान देखो, 58 पेज पर आए हम, समाधान यह है कि आत्मा राग बिना का है, क्योंकि ज्ञान है उतना आत्मा है और आत्मा का स्वभाव ही जानन है, तो उसमें राग करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। कल बेन आपने पूछती बात एक पूछी थी, दुख भी तो सभी पूरे प्रदेशों में उठता है ना, कल बात आई थी ना, सुख पूरे प्रदेशों में उठता है, तो दुख स्वभाव है के विभाव है, विभाव है, जैसे राग रहित आत्मा है तो आत्मा दुख सहित है कि दुख रहित है, उसने वो बाह्य पदार्थों का लक्ष्य करके वहां खड़ा हुआ है पर्याय में, आत्मा के गुणों में से वो उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे आत्मिक सुख जो अतीन्द्रिय सुख जो आत्मा के प्रदेशों में आत्मा के गुणों में से उत्पन्न होगा, वैसे वो दुख सभी गुणों, क्योंकि ऐसा कोई गुण ही नहीं जिसमें से वो दुख निर्माण हो जावे, वो सुख गुण के विपरीत पर्याय है वो, तो जैसे लोहा है उसमें जंग ऊपर जो पकड़ती है, ऊपर ऊपर है तो लोहे के अंदर घुस गई, अब ये जो सिल्वर की कोई अपने गहने कोई वस्तु है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है ना ऊपर, वो काला हो जाता है, काला होता है, पर अंदर सिल्वर कैसा है, वो बाहर ऊपरी ऊपरी है, खाली क्षेत्र से ऊपरी नहीं समझना, एक एक प्रदेश में उसको ऊपरी कहेंगे बाद में नहीं, वो तो वचनामृत में ये बात हो रही ना अभी, अमृत प्रवचन में, कि वो तलिया, ध्रुव तलिया कहा उसका, तल कहा उसका, प्रत्येक पर्याय के पीछे वो स्वभाव पड़ा है और वो स्वभाव में से वो सुख उत्पन्न हुआ है, इसलिए वहां सर्व आत्म प्रदेशों को लिया था। कल आप ही का प्रश्न था ना, देखो यहाँ क्या कहते हैं, हम यहाँ पढ़ रहे 58 पेज पर, आत्मा पहली लाइन, लाभ क्या है, तो आत्मा राग बिना का है, जीव तो अपने को राग में ही अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस कैसा कर रहा है, क्रोध रूप, लोभ रूप, माया रूप, और अपने को मान भी लेता है और उसी का उपाय भी करना चाहता है। तो कहते पहले में, पहले आत्मा ने मैं कौन हूं तो पहले ये नक्की करना है, पर्याय में राग के होते हुए उसी समय ये नक्की करना है कि मैं तो आत्मा ने कौन हूं, ये स्वभाव हुआ वह मैं, क्योंकि हमने दो बातें की ना, पर्याय और स्वभाव, तो स्वभाव में मैं पना स्थापित करना है, पर्याय रहेगी वहां पर, उसको लक्ष्य छोड़कर स्वभाव जितना मैं हूं, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत कायम हूं, पर्याय तो प्रति समय पलटने वाली है, तो और ये राग है वो पर्याय मात्र में है, और एक समय में खड़ा किया है हमने, वो विभाव परिणमन है। तो कहते हैं आत्मा कैसा है, राग बिना का है। ख्याल में आते हैं ऐसा क्यों कहा? आप कहेंगे राग बिना का है वो अच्छा हो गया। अरे अच्छा होगा नहीं, वो तो पहले उसको स्वीकार कहाँ किया है। और तेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान और आत्मा तद्रूप है, एकमेक है, तद्रूप है, तादात्म्य उनमें। तो ज्ञान में एकाग्र होने से तुझे धर्म होगा। देखो कितने सरल शब्दों में पूरा मोक्ष मार्ग इतना ही, और कुछ नहीं है। आत्मा राग बिना का है, पहले में पहले नक्की करना है ये स्वभाव है वह मैं हूं। अब क्या है, वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान और आत्मा तद्रूप है, एकमेक है, तादात्म्य है। और वो ज्ञान में ही आत्मा में एकाग्र होना कहो, ज्ञान में एकाग्र होना कहो, एक ही बात है। और उसी में एकाग्र होने से सहज जो पर्याय प्रकट होगी वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय प्रकट होगी। वो प्रकट करने के लिए कुछ करना नहीं है, वो प्रकट कैसे पर्याय होगी, पर्याय को कैसे बनाना, कुछ नहीं करना है। द्रव्य का स्वभाव ही हर समय परिणमित होने का है। उसी में एकाग्र हो जाओ, उसी में ठहर जाओ, तो स्वयं में वो जो पर्याय उत्पन्न होगी वो स्वभाव पर्याय उत्पन्न होगी। हम तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ये स्वभाव कैसे हो कैसे, यानी वो पर्याय को भी पलटाना चाहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, पेज नंबर 58 निकालना है, दूसरी पुस्तक चल रही है अपनी। तो कहते ज्ञान में एकाग्र होने से तुझे धर्म होगा। श्रोता पूछते दान दे दे तो धर्म होगा, क्योंकि ऐसे सुना है ना, जितना दान देगी उतना अच्छा धार्मिक है। समाधान, धूल में भी धर्म नहीं है। दान तो तू लाख दे या करोड़ दे दे, उसमें धर्म नहीं है। वो मैं देता हूँ, मेरा पैसा है, ये सब मान्यता पड़ी है, और बस यहाँ से वहां धन गया तो अपनी योग्यता से मान लिया कि मैंने धर्म किया। उसको तो देने का विकल्प हुआ, वो राग है, उसने इतना ही किया, और वो तो बंध का कारण है। क्या कहते हैं यहाँ पर, धूल में भी धर्म नहीं है। दान तो तू लाख दे या करोड़ दे, उसमें धर्म नहीं है। इतने तो क्या देगा, बनिए इतने नहीं देते। 5 करोड़ में से 1 करोड़ दे दे तो भी धर्म नहीं है। यहाँ तो ऐसा कहते हैं, तो 5 करोड़ वाला 5 करोड़, 1 करोड़ थोड़ी देने वाला है, लाख 2 लाख 10 लाख 25 लाख देगा, है ना। और 5 करोड़ दे दो तो तो धर्म होगा कि नहीं पूछ रहे। 5 करोड़ दे दे तो भी उसके कहाँ थे। वह तो जड़ है, ये मैंने पैसा दिया ये मान्यता वहां पड़ी है, बड़ा अधर्म पड़ा है। वह तो जड़ है, पैसा तो जड़ अजीव है, किसके पैसे और किसकी मिलकत भाई। आहा, यहाँ तो यह कहना है कि तेरा होता तो ले जाता ना साथ में, क्यों पड़ा रहते हैं यहाँ पर। धन तो धन मकान सब तिजोर में पड़े रहते हैं, और ये कहाँ चला गया, देह को भी छोड़कर क्या क्या ले गया। उसने कमाए थे ना, उसके है तो उसके साथ जाने थे, वो तो गए नहीं, बिल्कुल नहीं गए। यह तो यह कहना है कि वह पैसा जो ज्ञान में दिखता है, वह पैसा ज्ञान का विषय है, ज्ञान में जनाने वाली चीज है, तो ज्ञान का विषय है, नहीं ज्ञान का गेय है, ज्ञान की चीज नहीं। क्या कहते हैं, जानने में आता है वो, जानना इसलिए वो ज्ञान की हो गई, ऐसा कहाँ से आया। हमने जाना तो हमारी हो गई। वो शास्त्र में वो दृष्टांत देते हैं अमृतचंद्राचार्य कि चंद्र की चांदनी, चांदनी किसको कहते हैं, वो प्रकाश जो है चंद्र का, तो चंद्र की चांदनी पृथ्वी पर बढ़ती है, इसलिए पृथ्वी चांद की नहीं हो जाती। ऐसे हमने क्या किया, हमने तो मात्र जान लिया, देह को जाना तो यह मैं हूँ, पैसे को जाना तो ये मेरा है, घर को जाना तो ये मेरा है, तो कहते वो कहाँ से आया। ये ज्ञान की चीज नहीं, ज्ञान का गेय है। तो पैसा जैसे ज्ञान का विषय है, ऐसे आत्मा का भी वह विषय है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का जैसा विषय है, तो आत्मा का भी वह विषय है, ऐसी बातें हैं। दया पालो, प्रतिक्रमण करो, वह सब सरल था, क्योंकि उसी को धर्म समझाने वाले भी कहते थे, इतना करो तुम्हें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कहते वो सरल था, धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं, नहीं उसमें बिल्कुल धर्म नहीं है, भाई मार्ग कोई अलग है भाई, भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उसे राग की क्रिया का कर्ता मानना यह तो मिथ्यात्व है। यानी दया प्रतिक्रमण ये दया दान वगैरह का जो भाव आया है वो भाव का भी अगर कोई कर्ता माने, ये पांड बोलना वचन बोलना झुकना नमस्कार करना वो तो जड़ की क्रिया हो गई, परंतु उसका जो करने का जो परिणाम है वह भी राग है, और राग का भी अपने को कर्ता मानता है वो मिथ्या दृष्टि है ना। यहाँ पर राग की क्रिया का कर्ता मानना यह तो मिथ्यात्व तो है, राग मेरा है ऐसी मान्यता तो मिथ्यात्व तो है। तो ये राग क्या है हमने देखा ना, ज्ञान का गेय है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है और वो ज्ञान की परिणति जानने रूप हो रही है, और उसमें पर्याय में जो राग है उसको भी ज्ञान जान रहा है। वो ज्ञान क्या है, ज्ञान का गेय था, उसने क्या मान लिया ये मेरा है, मैं राग रूप हो गया इसे उसकी मान्यता, और ऐसे उसको फीलिंग भी हो रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस भी हो रहा है उसका, अपना मानकर उसको कर रहा है यानी वो करता भी होता है उसका और भोगता भी, उसका दुख का भोगता भी हो रहा है। तो कहते राग मेरा ऐसी मान्यता तो मिथ्यात्व तो है। देखो ये वैसे देखा जाओ तो ये एक सूक्ष्म बात पकड़ लो तो और कुछ नहीं है धर्म में इससे अलावा, मैं राग बिना का हूं मैं ज्ञान में हूं, पर ये राग में इतना एकत्व बना पड़ा है यहाँ पर इसके, तो ये मान्यता मिथ्यात्व है। यहाँ ये बात बताते हैं, यहाँ सर्वज्ञ का स्वरूप बताकर आत्मा का स्वरूप बताते हैं। अच्छा आप कहते हैं, हाँ आपने कहा, हाँ आपका मैं प्रश्न रिपीट कर, मैं आपका प्रश्न रिपीट कर रही हूँ। आपका कहना है राग पकड़ में आता है और उसको भिन्नता नहीं कर सकते, बराबर ना, यही प्रश्न है ना आपका। तो राग किसने पकड़ा, हाँ तो वो ज्ञान हमको जैसे राग पकड़ में आता है वैसे ज्ञान पकड़ में आ रहा है क्या, किसके पकड़ में आ रहे, वो पकड़ने वाला स्वयं ज्ञान है, नहीं समझे। अभी हमको जो झलकती है दर्पण में चीजें वो दिखती है, आपको दर्पण दिखता है क्या, अपन जब दर्पण में सुबह सुबह मुंह देखती हो तो कौन दिखता है, दर्पण दिखता है यही तो है, क्योंकि हमारा कहाँ लक्ष्य है, अरे वो और उसको भी दर्पण मानकर नहीं मैं मानकर देख रही हो, है ना, ऐसे ही राग को मैं मानकर सब देख रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं, जिसको आप पकड़ रहे हैं नहीं जान रहे, परंतु उसमें क्या है, जानने वाले के बिना वो राग को कौन जानेगा, तो जो जान रहे वही तो मैं हूं। अब जब दर्पण के सामने जाते हो तो जरा गौर करना, दर्पण को देखने की कोशिश करना, ये जो प्रतिबिंब दर्पण में झलक रहे हैं वो तो दर्पण की अवस्था है, मैं तो दर्पण, क्योंकि आप दर्पण के बाजू में दीवार है उसमें कोई प्रतिबिंब दिख रहा है आपको, तो दर्पण है आपने कैसे पहचाना, कैसे नक्की किया, यहाँ दर्पण है और बाजू में लकड़ी है तो आपने दर्पण है कैसे नक्की किया, आपने जिसमें वो झलक रहे, हाँ जिसमें चीजें झलक रही वो दर्पण है, ऐसे यहाँ ज्ञान है कैसे नक्की करेंगे, अरे जो जानने का कार्य हो रहे है सब ये सब चीजें जानने में आ रही है, ये सब चीजें छोड़ो, अपने में उठने वाले राग द्वेष जानने में आ रहा है वो तो जानने वाला ज्ञान है, उसके बिना जाना, क्योंकि वो पकड़ में आ रही है उसको तो उसका तो भरोसा है 100%। पंखा घूम रहा है के बंदे घूम रहा है वो नक्की है ना 100% ज्ञान है है, क्योंकि वो तो हमने आगम में जाना इसलिए है हाँ मालूम पड़ता है, कौन जान रहा है, मैं तो मैं भी जानने में आ रहा है ना, क्योंकि मैं जान रही हूँ ये तो आप कह रही हो, तो मैं भी है ज्ञान भी है जानने में आ रहा है सब कुछ हो रहा है, और वही तो और कौन है दूसरा उसमें, तो ये सामने वाली जो चीज दिख रही है उसका तो बिल्कुल 100% है, अरे मैं देख रही हूँ ना, और बाकी सब उसी समय में जानने में आ रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसकी तरफ लक्ष्य नहीं है हमारा, उसको हम कभी वो पकड़ में आ रही हो आने पर भी आप उसको नहीं पकड़ रहे, यही मैं हूं ऐसा नहीं पकड़ रहे, ये तो बात हो रही है ना, खाली खाली बोल लिया, क्योंकि हमने सीख गए ना, बोलने को सीख गए हम, अध्यात्म की भाषा हम सीख गए हैं।
मान लो आप यहाँ आने के पहले साल दो साल जितने भी हो गए होंगे, ये ज्ञान स्वरूप मैं हूँ इस बात का आपको किसी प्रकार का गंध था? अभी ये निश्चित हो रहा है कि मैं जानने वाला हूँ या जानने वाली हूँ, हाँ, ये जैसा पहले क्रोध आया और बाद में हमने जाना ऐसा लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय आप क्रोध कर रही है उसी समय मैं क्या यक हूँ, क्योंकि हमको दो में से एक को प्रिफर करना है, राग करने वाली मैं हूँ या जानने वाली मैं हूँ। तो वो जो प्रेफरेंस है वो जब हम मैं ज्ञान स्वरूप हूँ जानन स्वरूप हूँ ये बात आएगी तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपने जैसा मेरा त्रिकाली स्वभाव है उसको पकड़ा कि जानन स्वरूप मैं हूँ, जाननहार मैं हूँ, राग करने वाला मैं नहीं। अभी क्या होता है, राग हो गया, हम किसी के ऊपर बहुत गुस्सा किए, क्रोध कहो, फिर बाद में हरे हरे ऐसा नहीं करने का था, मेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा बाद में ध्यान में आता है, कोई बात नहीं, पहले वो भी नहीं आता था, एक दफे चालू हो गया तो चालू हो गया ऐसा। तो आस्ते आस्ते यू आर ऑन द राइट पाथ, ख्याल में है ना। अभी चट मंगनी पट शादी जैसी यहाँ क्या श्रद्धा पलटती नहीं है, उसको थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। डोंट वरी, आप सही रास्ते पे विचार कर रही हैं।
हाँ देखो, राग को जानते जानते आत्मा को जाना जाएगा, तो पहले हमने ज्ञान में हमने नक्की किया है कि स्वभाव है वो ज्ञानमय है और वो स्वभाव में राग नहीं है, तो जो होने वाला राग भले आपके ज्ञान में आ रहा है परंतु अभी उसका लक्ष्य छोड़कर स्वभाव को लक्ष्य करके जब अनुभव होगा प्रतीति, यानी उसको जानकर प्रतीति होगी उसकी, तब जो मैं चैतन्य हूँ मैं ज्ञानमय हूँ ऐसा अनुभव आ जाएगा, तब उसके बाद भी राग के काल में भी आप ज्ञान को पकड़ सकोगे। अभी कैसी कोशिश हो रही है, राग को जानते जानते आपको ज्ञान को पकड़ने की कोशिश हो रही है, वैसा नहीं होगा। स्वभाव को पकड़ो, उसके बाद आपको ज्ञान और राग की भिन्नता बिल्कुल ख्याल में आ जाएगी। तब तक खाली अपने पुस्तक से पढ़ा है और अभी हम राग होते होते, क्योंकि अभी तो हमको मालूम नहीं ना कि स्वभाव क्या है, उसका अनुभव ही नहीं हुआ है, तब तक वो ज्ञान को पकड़ने की कोशिश भी व्यर्थ जाएगी। क्योंकि राग से मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ ये विकल्प तो अंदर चल रहे, जिसको जल्प चल रहे है, और उसी में हमको उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे, ख्याल में आती है ना। ये बातें, इसके लिए तो अभ्यास तो चाहिए। जब रोटी बनाती थी पहले पहले छोटी थी, मम्मी के पास बैठ कर करती थी, कैसे होती थी हा? और अभी कैसे कहती, कहीं पर भी देखो और कभी तो गोल गोल अच्छी आती है ना, अभ्यास से होता है। देखो क्या कहते हैं, ये देखो ये बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट बातें यहाँ चल रही है। ज्ञान में ये निर्णय करने का कार्य प्रवचन सार अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए तो प्रवचन का दिव्य ध्वनि का सार बताए इसको, और ये पूरे द्रव्य का स्वरूप इसमें नक्की करना है हमको। यहाँ ये बात बताते हैं, मिला ना नीचे से वो दूसरा पैराग्राफ, यहाँ सर्वज्ञ का स्वरूप बताकर आत्मा का स्वरूप बताते हैं। ज्ञान तेरी चीज है, स्वरूप है, तो ज्ञान में राग जानने लायक है। जानने लायक का अर्थ क्या है, वो ज्ञान का गेय है, जानने लायक नहीं उसको जानते रहे ऐसा उसका अर्थ नहीं है। जानने लायक नहीं, जानने मात्र बस उतनी उसकी योग्यता है, यानी उसको आदरने लायक नहीं है, परंतु ज्ञान का आत्मा का राग है ऐसा स्वरूप नहीं है। क्या क्या है, वो ज्ञान का गेय है परंतु ज्ञान में जाना इसे वो ज्ञान का नहीं हो जाता, आत्मा का नहीं हो जाता। हमने जो जो चीजें जानी वो हमारी हो गई क्या तो कहते हैं आत्मा का राग है ऐसा स्वरूप नहीं है। आत्मा के पर्याय में है, आत्मा उसको जानता है, पर वो राग आत्मा का नहीं है, ये नक्की करना है। आत्मा का शरीर है, या आत्मा का यह पुत्र पुत्री है और व्यापार है, ऐसा है नहीं। आपने अच्छा है ना, हमको ये सहूलियत दिए नहीं, पर लास्ट में बताया ऐसा है नहीं। जब तक वो नहीं पढ़ते तब तक रुको मत कहते हैं। श्रोता, व्यापार न हो तो पैसा आएगा कहाँ से? चिंता तो उसके पैसे की है। मैं यहाँ मरकर कहाँ चला जाऊंगा उसकी कोई चिंता नहीं है, पेटी भरने की चिंता है ना। पूज्य गुरुदेव जी, कौन व्यापार करता था? पैसा तो धूल है, उसे आना हो तो आती है। एक बार कहा था ना, ऐसे बहुत लोग देखे हैं, बुद्धि के बारदान, समझते बुद्धि के बारदान, यानी ज्यादा कोई इंटेलिजेंस नहीं है, साधारण बुद्धि वाले हैं। बारदान समझ में आता है, बुद्धि से खाली, बुद्धि बिना का। एक बार कहा था ना, बहुत साल पहले की बात है, ज्यादातर 67 की साल की बात है, पार्ले से हम बम्बई माल लेने जाते थे, वह एक खोजे की दुकान थी, वह हमारे गांव का एक आदमी नौकर था। हम अकेले नहीं जाते थे, हमारे साथ कुंवर जी भाई या राम जी भाई रहते थे। हम दोनों माल लेने जाते थे, उसके बहुत बड़े गोदाम थे, 2-3 पेटी हमने माल लिया। नौकर ने कहा, एक पेटी हमारे नाम पर ले लो साहेब, मुझे पैसा दे देना। हमने कहा, हमारा ऐसा काम नहीं है। वहाँ सामने होटल थी, वहाँ उसका खोजा सेठ बैठा था। उसे देखकर ऐसा लगा, यह तो जाड़ी बुद्धि जैसा लगता है, गवार लगता है। लेकिन उन दिनों में 66 की साल में वर्ष के 50,000 कमाता था। अब गुरुदेव जब यानी वो कॉलेज में थे, जब व्यापार धंधा चलता था, तब की बात है, ईस्वी सन नहीं, सन नहीं। बुद्धि वाले होते हैं वही कमाते हैं। श्रोता कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री, बुद्धि धूल में है, यह कहा ना, ऐसी बुद्धि के बारदान भी उन दिनों में 50,000 साल के कमाते थे, उस समय के 50,000, और अभी के 30 गुना किन लो, अभी के 15 लाख। अभी यानी वो जमाने, वो 78 में प्रवचन कर रहे थे, तभी की बात है, तभी के 2 लाख की कीमत आज 2 करोड़ हो गई है, 4 करोड़ हो गए। पहले के पैसे की कीमत कितनी और अभी की कितनी? हाँ, हमारे पिता के पिताजी के पास 10,000 की मूड़ी थी। हमारे बाप के बाप गीगा कुंवर के नाम से कहलाते थे, गड्ढा गांव के, बहुत इज्जतदार आदमी थे। उस समय 10,000 माने ओहो, बड़े इज्जतदार कहलाते थे। गीगा कुंवर 12 महीने में 2,000 पैदा करते थे। हमें तो दूसरी बात कहनी है कि 2 महीने ही धंधा करते थे, वो 12 महीने धंधा नहीं करते थे। पहले के सेठ लोग 2 महीना ही धंधा करते थे, बाकी के 10 महीने नहीं करते थे। अभी तो 12 महीना मजदूरी करते। हमने तो सब देखा है ना। हमारे पिताजी की नई माँ गड्ढा गांव में थी, वह कहती थी, गीगा सेठ ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा सब सुना था। उसमें कुछ नहीं आ, उन दिनों में 10,000 यानी अभी के 30 गुना गिनो तो इतने लाख तो उस समय थे। इज्जत बहुत बड़ी थी, दुकान पर बैठते नहीं थे, मात्र धोलेरा गांव में आदमी को भेजे और रुई की पेटी में से 2 महीने में 2,000 कमा ले बस। और उन दिनों में 12 महीने का खर्च कितना था? 300 रुपया, 300 रुपया। अभी तो 1 महीने में 300 रुपये की तो सब्जी चाहिए। आज तो एक दिन को एक बार जाते हैं तो इतने लगते हैं। उन दिनों में खर्च बहुत कम था, यह 100 साल पहले की बात है। लेकिन सब 2 महीना मजदूरी करे, बाकी के 10 महीने नहीं, और अभी तो 12 महीने बड़े मजदूर मजदूरी करते। हाँ, यहाँ कहते हैं, प्रभु एक बार सुन तो सही नाथ, आत्मा को, प्रभु को भगवंत कहकर बुलाते। भगवंत, तेरा जो ज्ञान स्वभाव है वह आत्मा में सर्वव्यापक है, यानी जितना आत्मा है उतना उसका पूरा व्यापा हुआ स्वभाव है, और यह ज्ञान सर्व ज्ञेय को जानता है। बस यह तेरी चीज है, तेरा स्वरूप है। ज्ञान सबको जानता है, तो ज्ञान को जैसे सर्वगत कहा तो आत्मा को भी सर्वगत कहा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा एक है। इसलिए यहाँ आत्मा को भी सर्व का जानने वाला होने से सर्वगत कहने में आया है, ऐसी बात है। इस प्रकार सर्व पदार्थ भी सर्वगत ज्ञान के विषय होने से सर्वगत ज्ञान से अभिन्न अर्थात ज्ञान से भिन्न नहीं है ऐसा आत्मा उन भगवान के वे विषय हैं। समझ में आते हैं ना? पहले ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा भी सर्वगत कहा, अभी सभी पदार्थ सभी अर्थ ने सभी द्रव्य ज्ञान के विषय है तो आत्मा के भी विषय ऐसा कहेंगे। यानी ज्ञान का जैसे लोकालोक विषय है ऐसे आत्मा का भी लोकालोक विषय है। विषय ने उसको जानते हैं। ज्ञान वही है पर वो तो स्वभाव है ना, उसमें से वो एक गुण भी है, ज्ञान एक गुण है। जहाँ ज्ञान है वहाँ पूरा ही आत्मा है, उस सारे गुण आ गए। ज्ञान के द्वारा आत्मा का स्वभाव नक्की कर रहे हैं, उसका असाधारण गुण बताया ना, प्रकट लक्षण है उसका। आपका प्रश्न है बार बार ज्ञान को और आत्मा को जुदा क्यों बता रहे हैं? जुदा है नहीं, उसमें एकत्व है, परंतु एक को बता के हम क्यों पूरा आत्मा का स्वरूप बताना है? जानने वाला गुण कौन सा है? जानने का कार्य ज्ञान कर रहे हैं, तो ज्ञान कर रहे हैं आत्मा ही कर रहे हैं, वो जुदा थोड़ा है उससे। पहले ज्ञान पर घटित करके उस आत्मा पर घटित कर रहे हैं, क्योंकि लिखा नहीं, यहां लिखा ही है क्योंकि ज्ञान से आत्मा अभिन्न है, उसको भिन्न करने का प्रयोजन नहीं है। आत्मा भी सर्वगत है और सारे पदार्थ आत्मा के विषय है, ऐसे ही बताना है। ज्ञान से अभिन्न आत्मा इसलिए ऐसा शास्त्र में कहा है, ऐसा भगवान की वाणी में सिद्धांत में आया है। इसलिए सर्व पदार्थ भगवान गत यानी भगवान में प्राप्त ही है, है? सर्वज्ञ परमेश्वर अरिहंत त्रिलोकनाथ के आत्मा में लोकालोक सर्वगत है यानी प्राप्त है। सर्वगत अर्थात सबको जानते हैं। आगे कहते हैं यहाँ ऐसा समझना कि निश्चय नसे हुए नए से देखो, यह रह गया, हाँ अब आया। यहाँ यह समझना कि निश्चय नए से नाम यथार्थ दृष्टि से देखो तो यानी इन रियलिटी यथार्थ दृष्टि से देखेंगे तो अनाकुलता लक्षण सुख का, हाँ आत्मा में अनाकुल आनंद भरा है। सवेरे में भजन में आया था ना, मुरगला ने मोड़ी खबरू पड़ी, ऐसे इस आत्मा को बाद में पता चला कि मैं आनंद हूँ, ऐसा कहते मुरगला ने मोड़ी खबरू पड़ी यानी देर हो गई उसको समझने में। मोड़ी समझे आखिर में, हिरण को आखिर में पता चला, हिरण की नाभि में कस्तूरी और वन में भटके उसकी गंध आती है, इसलिए गंध कहाँ से आती है उसकी खबर नहीं, उसे ढूंढने के लिए वन में भटके। मृगला ने मोड़ी खबरू पड़ी, ऐसे हिरण को आखिर में जब पता चला कि अरे रे कस्तूर तो मेरे पास है, पारघी मृग को मारकर कस्तूरी ले, पारधी धी चाहिए ना, घी हुआ पारधी चाहिए, पारधी नहीं वो तो उसको पकड़ने वाले शिकारी, वो घ हुआ है उसको ध करना। पारधी मृग को मारकर कस्तूरी ले गया, मृग को नहीं मिली और पारधी ले गया, वो घी हो गया, सब जगह धी करना। यहाँ यह कहते देखो ऐसे यह भगवान आत्मा निश्चय नहीं से अनाकुलता लक्षण सुख, इस आत्मा में अनाकुल लक्षण सुख भरा है। जैसे ज्ञान आत्मा प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, वैसे आत्मा में अनाकुल लक्षण आनंद भी आत्मा प्रमाण है, अतीन्द्रिय आनंद है। हो ये विषय की कल्पना में जो आनंद बनता है वो तो मूढ़ मिथ्या दृष्टि है, ये न वो तो दुख है, वो सुख नहीं है। इसलिए क्या कहा यहाँ अनाकुल लक्षण आनंद को आत्मा प्रमाण कहा, जो आपने कल बताया पूछा था, दुख भी तो आत्मा प्रमाण होगा, परंतु वो आत्मा के वो तलिये से में से उठा हुआ नहीं है, वो उसने खड़ा कर दिया है कल्पना से। अतीन्द्रिय आनंद है वो हो, ये विषय की कल्पना में जो आनंद मानता है वह तो मूढ़ मिथ्या दृष्टि है, कल्पना का है, उसने माना हुआ है। स्त्री में सुख है, विषय में सुख है, आबरू में सुख है, पैसे में सुख है, अच्छे मकान में सुख है, यह मिथ्या मान्यता तो अज्ञानी का भ्रम है, वो वस्तु स्थिति नहीं है। वह मृग के जैसे नाभि में कस्तूरी है और ढूंढता है बाहर, ऐसे अनाकुल आनंद तो यहाँ अंदर भगवान आत्मा में पड़ा है। समझ में आया? भगवान आत्मा सुख का सागर है, अरे लेकिन उसको खबर कहाँ है, और वो दुखी दुखी हो रहा है, क्या सुख से लबालब भरा हुआ है, सुख सुखमय है, और फिर दुखी होकर बाहर सुख के लिए ढूंढ रहा है कि नहीं? ऐसी पोजीशन, अनाकुलता लक्षण सुख ऐसा कहा, यानी आनंद का लक्षण अनाकुलता है, आकुलता नहीं। जो यह दयादान काम क्रोध के राग आदि होते हैं, यह तो आकुलता और दुख है। आप कहेंगे क्रोध तो आकुलता है, दया में दान करने में तो कैसा अच्छा लगता है ना, तो कहते वो राग शुभ हो या अशुभ हो, द्वेष हो या राग हो, है तो सब दुख रूप आकुलता। दुकान पर बैठकर लाखों रुपए पैदा करते हैं, वह भाव दुख है, आकुलता है। अरे हमको तो अंदर गदगदी हो रही है ना, ऐसा कहते। ज्यादा पैसे मिले तो कैसे अच्छा अच्छा लगता है ना? यहाँ प्रभु कहते हैं, जैसे ज्ञान यानी जानपना का स्वभाव आत्मा प्रमाण है और ज्ञान गेय प्रमाण है, ऐसे आत्मा भी गेय प्रमाण है, ज्ञान से आत्मा अभिन्न है। तो ज्ञान जैसे पर को जानता है, तो आत्मा भी पर को सबको जानता है। क्यों? वह अब कहते हैं कि अनाकुलता लक्षण आनंद का आधार भगवान आत्मा है। पहले ज्ञान की बात है, अभी अनाकुलता आनंद की बात चल रही है। जैसे ज्ञान जानपना का आधार आत्मा है, वैसे अनाकुलता आनंद स्वरूप का आधार भगवान आत्मा है। कैसे बात बैठे? कहते हैं अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन, संवेद उसका जो अनुभव, उस सुख संवेदन के अधिष्ठान का जितना ही आत्मा है, सुख संवेदन के अधिष्ठानता जितना। यहाँ ज्ञान यानी जानपना लो, अधिष्ठानता यानी किसमें से उठा है वो, उसका अधिष्ठान, उसका आधार क्या है? अधिष्ठानपना जेवड़ो ज आत्मा छे, अधिष्ठानपने को यहाँ अधिष्ठानता कहा हिंदी में। यहाँ ज्ञान जानपना जो कहा, वह ज्ञान यानी स्वभाव की बात चलती है हो, वह वकालत का ज्ञान या डॉक्टर का, एमए का ज्ञान, एलएलबी का ज्ञान, वह ज्ञान नहीं, वह तो कुज्ञान है। क्या लिखा? और वह ज्ञान तो पर्याय में है, यहाँ तो अंतर ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है। स्वभाव जैसे शक्कर का मीठा स्वभाव है, वैसे भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। जैसे अफीन का कड़वा स्वभाव है, वैसे भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। यहाँ इस स्वभाव की बात चलती है। ऐसा धर्म मार्ग कहाँ से निकाला? हा, भगवान ऐसा कहते थे प्रभु, वह मार्ग है। 61 पेज पर आना। निश्चय ने सत्य दृष्टि से अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन, देखो क्या कहा, अंदर पर्याय में सुख का वेदन हो, जैसे ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है वह ज्ञान आत्मा के आधार है, ऐसे पर्याय में जो आनंद का वेदन है इस आनंद का आधार आत्मा है। ऐसी बातें हैं। इसलिए कल जो बात आपने पूछी थी कि दुख का आधार आत्मा नहीं है, वो तो ऊपरी ऊपरी है, स्वभाव में से उत्पन्न नहीं हुआ है। उसको आत्मा का आधार नहीं कहेंगे, ऐसा कोई गुण ही नहीं है राग करे, ऐसा कोई गुण नहीं कि दुख करे। वो जीव ने वहां खड़ा कर दिया पर्याय में अपनी मिथ्या मान्यता के अज्ञान के कारण। ये पैसे में और धूल में सुख नहीं है ऐसा कहते हैं। आनंद तो आत्मा में है, जैसे ज्ञान आत्मा में है, समझने का स्वभाव है यह आत्मा का है और आत्मा में है, ऐसे आत्मा में आनंद है। यह सुख और आनंद जो है यानी अनाकुलता लक्षण सुख है, उसका आधार आत्मा है। सुख का जो संवेदन परिणाम है, देखो उस सुख संवेदन के अधिष्ठानता, उसका अर्थ नीचे कोष्टक में दिया है, अधिष्ठान ने आधार, रहने का स्थान, आत्मा सुख संवेदन का आधार है। जैसे ज्ञान स्वभाव है उसकी जानने की पर्याय होती है। देखो पहले स्वभाव लिया और उसकी जानन रूप पर्याय होती है, उसका आधार आत्मा है। ऐसे आनंद स्वभाव त्रिकाल या अनाकूल आनंद स्वभाव है, सम्यक दृष्टि को धर्मी को उस आनंद का वेदन जो आया उसका आधार आत्मा है। धर्मी को यह आनंद का जो वेदन आया उसका आधार आत्मा है। ऐसे तो अनादिकाल से राग और द्वेष होता था, वह तो दुख है, चाहे तो व्रत और तप का विकल्प हो लेकिन वह राग और दुख है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा की पर्याय नहीं। आत्मा की पर्याय आत्मा जैसे होनी चाहिए, इस अपेक्षा से यहाँ कहा। इसे 47 शक्तियों में भी उछलती हुई नहीं, कौन सी निर्मल निर्मल परिणमन, वो आत्मा की बात है, वो आत्मा की पर्याय, जो स्वभाव जैसा गुण है वैसे उसकी पर्याय होना, उसको स्वीकार किया आत्मा में, और बाकी जो राग है दुख है उसको आत्मा का स्वीकार भी नहीं किया। हाँ, कोई भी प्राणी को अपने अनाकुलता लक्षण आनंद के अलावा पर चीज में कोई आकर्षण हो जाए कि यह ठीक है तो यह सब दुख है, क्या कहते हैं, और वो उसको दुख लगता ही नहीं। वो तो चीजें अच्छी लगती है और वो हासिल करने में उसको तो सुख अनुभव हो रहा है, यह क्या कहा? पर के प्रति आकर्षण या कोई अच्छी लगनी उसमें से सुख है ऐसे उसको लगना यही दुख है कहते हैं। फिर से पढ़ते देखो, कोई भी प्राणी को अपने अनाकुलता लक्षण आनंद के अलावा यानी उसको छोड़कर पर चीज में कोई आकर्षण हो जाए कि यह ठीक है तो यह सब दुख है, यह भाव अनाकूल आनंद से विपरीत दशा है। स्त्री के विषय भोग में जो अंदर राग होता है वह दुख है सुख नहीं, क्योंकि आत्मा स्त्री को भोग सकता नहीं, क्योंकि यह शरीर, स्त्री का शरीर तो मांस हड्डी है जो मिट्टी जड़ है, परंतु अज्ञानी जी उसका लक्ष्य करता है यह ठीक है ऐसा राग करता है, उस राग का अनुभव करता है शरीर का नहीं। लड्डू खाता है मीठा लगता है अच्छा लगता है तो कहते वो राग का किसका अनुभव कर रहा है, वो उसके प्रति जो उसका चाह है ना, राग है, उसका अनुभव कर रहा है क्योंकि पर चीज का कोई अनुभव ही नहीं कर सकता, वेदन जो होता है अपनी पर्याय का होगा, राग उसकी पर्याय में है। लड्डू का तो मीठापन जाना उसने, उस संबंधी ज्ञान हुआ और उसने माना मैं इसको अच्छा अच्छा खा रहा हूँ, तो लड्डू का वेदन किया कि नहीं किया, तो कहते नहीं उसका कुछ, उसके राग का वेदन किया। गुरुदेव ने बहुत बार ये बात बताई, यह राग का अनुभव है दुख का अनुभव है, यह पैसे वाले 20 लाख दिए और लिए ऐसा जो भाव करते हैं वह भाव भागने भाव राग और दुख का है, ऐसा कहते हैं। वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद
नमो अरियंता नमो सिद्धांत नमो आय।